नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न दें और मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधित के साथ अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया। बीटिंग रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के विजय चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों पर चिंताओं के बीच आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉव अलर्टाइज ने पद से इस्तीफा दिया। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की घटना की स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनसे कई बार बात की। मेला क्षेत्र में आज सुबह हुई दुर्घटना के बारे में उन्होंने कहा है कि अवरोधों पर पार करने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्थिति की जानकारी के लिए उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने समीप के घाट पर स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ में घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा है कि प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद देने में जुटा हुआ है।
मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस दुखद हादसे पर उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में इलाज हो रहा है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसारक कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण किया। जीएसएलवी F-15 रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6:23 पर छोड़ा गया। इस मिशन में NVS-02 उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस फ्रॉम द स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो दैट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस ईयर 2025 हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड विद जीएसएलवी F-15 लॉन्च व्हीकल प्रिसाइसली इंजेक्टिंग द नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 इन द रिक्वायर्ड इंटेंडेड ऑर्बिट।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्य पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 6 महीनों में विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने पर सवाल उठाया है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा है कि रिपोर्ट को जल्दबाजी में अपनाया गया है। वहीं कांग्रेस के नसीर हुसैन ने कहा है कि उनके द्वारा की गई कई आपत्तियों और सुझावों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना UBT सांसद अरविंद सावंत, अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी कहा कि उन्होंने अपनी असहमति लिखित रूप में दर्ज कराई है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रैलियों तथा रोड शो के अलावा घर घर जाकर भी प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है कि दिल्ली के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए आवास निर्माण करे, दिल्ली को आधुनिक बनाए और सभी घरों को नल से जल उपलब्ध कराए, साथ ही टैंकर माफिया से भी मुक्ति दिलाए। आज दोपहर बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना खादर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की बहानेबाजी, लूट और झूठ जारी नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आपके 25 साल के शासन में दिल्ली की समस्या जो कि त्यों है और इन दोनों दलों ने दो पीढ़ियों को बर्बाद किया है। श्री मोदी ने भाजपा की दिल्ली में सत्ता में आने के बाद लोगों से किए गए वादे समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने की भी बात कही और कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में हुई दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रोड शो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ घोषणा पत्र जारी की। इनमें महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रूपये, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। श्री रमेश ने कहा है कि गारंटी का मतलब है कि ये जनता का अधिकार है और उन्होंने शहर में प्रदूषण के मुद्दे की कथित रूप से अनदेखी करने के लिए भाजपा और आप पर निशाना साधा। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए यातायात के प्रबंध के लिए आयोजन किया है। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए 2 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक बंद रहेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इसमें सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं और घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय रणनीतियां होंगी। विशेषज्ञों और लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार का ध्यान देश में सुदृढ़ ढांचे के निर्माण पर जोर देकर आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और वित्तीय कुशलता पर होगा। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि माओवादियों का एक दस्ता पुलिस बलों पर हमला करने की योजना बना रहा था। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जियोफ अलारडाइस के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा देने की पुष्टि की है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर चिंताओं के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया। अपने विदाई संदेश में श्री अलारडाइस ने कहा है कि उन्हें क्रिकेट की वैश्विक पहुंच बढ़ाने से लेकर आईसीसी सदस्यों के लिए व्यावसायिक आधार तैयार करने पर बेहद गर्व है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने भी श्री अलारडाइस को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनके प्रयासों ने वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कई स्टेडियमों में नवीकरणों का काम देरी से चल रहा है और यहां तक कि टूर्नामेंट की संसारणी भी देरी से की जा रही है। पूर्व भारतीय कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली में घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार है। वे रणजी ट्रॉफी में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेलेंगे और गुवाहाटी में इंडियन सुपर लीग में आज शाम 7:30 बजे इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।